राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा।
हरि बोल।
जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन यशोदा जय हो। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन यशोदा। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधिका रमण ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर नताई की जय। समवेत भक्त वृंद की की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांबा। हरे कृष्णा। तो आज कोई श्लोक नहीं लिखा है श्वेत पट में। जन्माष्टमी के उपलक्ष में हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत से कथा कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। श्लोक संख्या 7 से अध्याय पर्यंत मैं केवल श्लोक पढ़ूंगा या गाऊंगा, और कुछ तात्पर्य में से कुछ अंश पढ़ूंगा, और विशेष रूप से कथा पर ज़्यादा हम जोर देंगे। ठीक है, ये जो प्रसंग चल रहा है वो ये है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रजवासी इंद्रियाग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंद्रियाग, इंद्र का विशेष रूप से पूजन। तो जो गोवर्धन पूजा जिस दिन होती है उस दिन ब्रजवासी गोवर्धन पूजा नहीं करते थे। कई सौ सालों से जो प्रथा चल रही थी वो इंद्रयाग की थी। इंद्रयाग गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण ने जो शुरू की है तो उसमें कुछ भी नया नहीं है। सब तैयारियां वैसी जैसे गोवर्धन पूजा की होती है उसी प्रकार की सब तैयारी। केवल अंतर यही है कि इंद्र की पूजा की जगह कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा कराई उसी सामग्री से, जो सामग्री जिस सामग्री से इंद्र की पूजा होती थी। तो भगवान कृष्ण ने ये देख करके कि इंद्र के अंदर घमंड आ रहा है, अब इंद्र के अंदर घमंड आ रहा है, इंद्र कहाँ है और भगवान यहाँ पर है। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, छोटे से हैं कृष्ण 7 वर्ष के, लेकिन वे जो है इंद्र का घमंड देखे कि इंद्र अपनी पूजा समझ रहा है ना, और एक बार भगवान की दृष्टि में इंद्र के द्वारा ये चोरी हो रही है। तो ब्रजवासियों का कुछ भी इसमें दोष नहीं है, और वे पूजा कर रहे हैं तो इंद्र से कुछ भौतिक कामना भी नहीं करते हैं, वे तो कर्तव्य भावना से कर रहे हैं। जैसे गीता में भगवान ने बताया है कि कैसा है, अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो यजते। सात्विक यज्ञ क्या होता है? बिना किसी फल की आकांक्षा के किसी भी देवता की पूजा करते हैं या यज्ञ करते हैं। अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो यजते यष्टव्यमेव इति मना समाधाय। सात्विक कहा कि यज्ञ करना चाहिए इसलिए यज्ञ किया है, कोई भौतिक कामना नहीं है, तो सात्विक पूजा है, तो उसमें कोई बंधन नहीं है, कोई दोष नहीं, शुद्धिकरण होता है। तो ब्रजवासियों की ओर से कुछ भी इसमें कमी नहीं थी और भगवान को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन शिकायत किससे थी? किससे शिकायत थी? इंद्र से शिकायत थी, इंद्र अपनी पूजा समझ रहा है। क्योंकि ये जो देवता लोग होते हैं ये भगवान की ओर से नियुक्त किए हुए अधिकारी होते हैं जो पूजा प्राप्त करते हैं और पूजा को भगवान तक पहुँचाएँ। जैसे कि टैक्स कलेक्टर होते हैं तो वो जो है टैक्स वसूल करते हैं, और कहाँ जमा करते हैं? सरकार को जमा करते हैं। तो कृष्ण सरकार हैं, तो सरकार की नज़रों में इंद्र कौन है? चोर है, क्योंकि वो पूजा ले रहा है और भगवान को पूजा नहीं दे रहा है। तो कृष्ण ने ब्रजवासियों को ये सब नहीं बताया कि मैं परमेश्वर हूँ और इंद्र जो है मेरी चोरी कर रहा है। नहीं, कृष्ण जो है मनुष्य की लीला कर रहे हैं। तो कृष्ण ने दूसरे ही कुछ युक्तियाँ दे करके इंद्र की पूजा बंद कराई। अरे इंद्र से हमें क्या लेना देना, कहाँ इंद्र और कहाँ हम, हमारा इंद्र से सीधे कोई संपर्क तो होता नहीं, ना वो हमसे मिलते ना हम उनसे मिलते। सीधा संपर्क तो हमारा गोवर्धन पर्वत से है, गोवर्धन पर्वत जो गौओं को वर्धित करे यानी बढ़ाए। भाई गौ में जो है घास खाती हैं और जो है उसमें हमें अच्छी छाया मिलती है ना, गोवर्धन से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो हम अशिक्षित जो है जंगली लोग हैं तो हम जो है पर्वत की पूजा क्यों ना करें, पर्वत पर्वत की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो, गवों की पूजा करो, ये हमारे जो है प्रत्यक्ष देवता हैं। तो कृष्ण जो है बड़े सरल युक्तियों से इंद्र की पूजा बंद करा दी, गोवर्धन की पूजा। और फिर गोवर्धन की पूजा जब कृष्ण ने कराई तो इंद्र को भी कोई शिकायत नहीं थी, या इंद्र को पता भी नहीं चला। तो फिर जब इंद्र को पता चला तो यहाँ तो नहीं बताया गया कि इंद्र को किसने बताया, किस कैसे पता चला, लेकिन गर्ग संहिता में लिखा है कि नारद जी कथा सुना रहे हैं, ये सब कथाएं नारद जी सुना रहे हैं राजा भोलास को। तो कहते मैंने बताया था इंद्र को, नारद जी कहते मैंने बताया था इंद्र को, और इस तरह से बताया जिससे उसको क्रोध आए। नारद जी बताने का तरीका भी तो कभी इस तरह का होता है, कभी उस तरह का होता है। इस तरह का बताया नारद जी ने कि इंद्र को लगा कि मेरा अधिकार छीना है कृष्ण ने, और कृष्ण जो है सामान्य मनुष्य, मनुष्य का एक बालक है कृष्ण। तो नारद जी इस तरह से समझाया इंद्र को कि इंद्र को बहुत गुस्सा आया, और इंद्र ने जो है फिर सामर्थक मेघों से कहा। तो इस सातवें श्लोक चल रहा है, सातवें श्लोक से मैं शुरू करूंगा। तो वो इंद्र की बात जो है सामर्थक मेघों से हो ही रही है, तो सामर्थक मेघों से ही कह रहे हैं। सामर्थक मेघ वो हैं जो कि प्रलय काल के समय वर्षा करते हैं। सामर्थक मेघों की वर्षा जो है ना कभी किसी ने देखी ना कभी किसी ने सुनी प्रलय काल के समय, लेकिन वो उस समय देखी गई प्रलय काल की वर्षा। वो केवल ब्रज के ऊपर, वो पूरी पृथ्वी ऊपर प्रलय काल की जो वर्षा होती है तो वो सातों समुद्र एक हो जाते, सातों समुद्र एक हो जाते हैं, पूरी पृथ्वी डूब जाती है। तो मैं अपने हाथी एरावत पर चढ़कर तथा अपने साथ वेगवान और शक्तिशाली वायु देवों को लेकर नंद महाराज के ग्वालों के ग्राम को विध्वंस करने के लिए तुम लोगों के पीछे रहूंगा। तो मैं भी पीछे आ रहा हूँ, मतलब सामर्थक मेघों को डर लग रहा है क्योंकि उनका ये समय तो नहीं है, और ऐसे गलत समय में अगर वर्षा करेंगे तो उनके ऊपर काफ़ी बड़ा जो है कार्यवाही की जा सकती है उनके विरुद्ध, है ना। तो इंद्र कहते तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, तुम चलो आगे वर्षा करो। इसलिए अहम चैरावतम नागम आरोहयानु ब्रजे ब्रजम मरुद्गणैर महावेगैर नंद गोष्ठ जिघांसया। मरुद्गणैर महावेगैर, 49 मरुद्गण हैं। इनकी अलग कथा है कि ये दीदी के पुत्र थे लेकिन दैत्य नहीं कहलाए बल्कि ये देवता बन गए। और ये 49 एक बालक था जिसको इंद्र ने अपने वज्र से 7 टुकड़े कर दिए, तो फिर 7 बालक बन गए और फिर रोने लगे। तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि ये 7 बच्चे रो रहे हैं, अब तो और आवाज़ हो रही है, माता जाग जाएगी। तो 7 के और 7 टुकड़े किए तो 49 बालक बन गए और वो रोए। और वो बोले कि हमें क्यों मारते हो, हम तो तुम्हारे भाई हैं। तब इंद्र को समझ आया कि हाँ कश्यप मुनि ने तो ये कहा था कि अगर दीदी से कुछ व्रत में त्रुटि हो जाएगी तो वो जो बच्चा है वो इंद्र का शत्रु और इंद्र को मारने वाला ना बनकर के इंद्र का भाई बन जाएगा, इंद्र का मित्र बन जाएगा। तो इंद्र ने कहा अरे तुम लोग जो है मुझसे डरो नहीं, तुम तो मेरे छोटे भाई हो। इस तरह से जो है ये इंद्र के भाई बन गए 49। तो मरुद्गण है ये। तो इंद्र कह रहे हैं मरुद्गण है महावेगैर नंद गोष्ठ है जिघांसया, नंद के गोष्ठ को जो है नष्ट करने के लिए मैं भी जो है मरुद्गणों के साथ आ रहा हूँ। महावेग है जो बहुत वेगशाली हैं। तो बादलों को जो है बरसाने के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है, हवा की सहायता। और हवा के जो देवता हैं, वायु के देवता कितने हैं, 49 हैं मरुद्गण, 49 मरुद्गण हैं, 49 प्रकार के जो है वायु होते हैं। तो इंद्र कह रहे हैं कि नहीं तुम लोग अकेले थोड़े ही हो, ये विनाशकारी कार्य जो तुम कर रहे हो इसके पीछे मेरा हाथ है और मैं तुम्हारे पीछे हूँ और एरावत पर चढ़ करके मैं भी आ रहा हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा इंद्र के आदेश से प्रलयंकारी मेघ समय से पूर्व अपने बंधनों से मुक्त होकर, समय से पूर्व बंधन से मुक्त होकर, यानी बंधे रहते हैं ये ब्रह्मा जी के दिन के जो है अंत में खोले जाते, इनका बंधन खोला जाता है। तो इंद्र ने बंधन खोल दिया, अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। इंद्र का जो अधिकार है वो तो एक मन मंत्र का है, एक मन मंत्र का है ना। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन मंत्र होते हैं, तो सातवां मन मंत्र चल रहा है। सातवें मन मंत्र के बाद इंद्र भी बदल जाएंगे। तो इंद्र को तो अधिकार ही नहीं था, सामर्थक मेघों के बंधन को खोलने का अधिकार ही नहीं था, यह अधिकार का दुरुपयोग किया। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा इंद्र के आदेश से प्रलयंकारी मेघ समय से पूर्व अपने बंधनों से मुक्त होकर नंद महाराज के चरागाहों पर गए। वहां वे ब्रजवासियों पर मूसलाधार वर्षा करके उन्हें सताने लगे। इत्थं भगवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोकुल मासारे पीड़िया मासुरोजसा। तात्पर्य में लिखा है सामर्थक मेघ समूची पृथ्वी पर एकमात्र विशाल सागर से छा सकते थे। ये मेघों ने महान शक्ति के साथ ब्रज की समतल भूमि को आप्लावित करना प्रारंभ किया। भयानक वायु देवताओं द्वारा प्रेरित बादल बिजलियों की चमक से प्रज्वलित होते और ओलों की वर्षा करते हुए कलकलाहट के साथ गरजने लगे। विद्योतमान विद्युत भी स्तनता स्तन यत्न भी तीव्रैर गणैर्नुन्ना वव्रसुर जल सरकरा। बहुत भयानक दृश्य है, बहुत भयानक दृश्य है। कैसी वर्षा है ये? बादलों ने जब बड़े बड़े खंभों जैसी मोटी धाराएं गिराई तो पृथ्वी बाढ़ से जलमग्न हो गई और ऊंची अनीची भूमि का पता नहीं चल पा रहा था। स्थूला स्थूला वर्ष धारा मुंचन स्व मुंचत स्वभ्रे स्वभीक्षण सहा जलौघे प्लाव्यमाना भूर ना दृश्यते न तोन्नतम। वर्ष धारा कैसी है? स्थूला और स्थूला दो प्रकार की वर्षा धारा है। वर्षा की धारा दो प्रकार की है, कैसी है? एक है स्थूणा, स्थूणा का मतलब खंभे के समान वर्षा की धारा है, या कभी हाथी के सूंड के समान कही जाती है वर्षा की धारा। सोचिए कैसी धारा होगी, खंभे के समान अगर वर्षा की धारा हो तो कैसा लगेगा? अरे बोल, ऐसी वर्षा की धारा हो रही है फिर भी नींद आ रही है। इतने भारी संकट में जो है अभी ब्रजवासी पड़े हैं। कैसी धारा है ये खंभा देख रहे? ऐसी धारा। हाँ, आपने जो देखी धारा वो कैसी धारा होती है? कितनी मोटी होती है? एक सेंटीमीटर में, आधा सेंटीमीटर भी नहीं होती, आधा सेंटीमीटर भी नहीं होती है, बूंदे होती हैं। हाँ, तो अगर धारा जो है धारा है तो खंभे के समान मोटी धारा है, और या फिर स्थूला वर्षा धारा, स्थूणा और स्थूला है। तो वर्षा की धारा जो है एक स्थूणा है, स्थूणा का मतलब खंभे के समान है, दूसरी स्थूला, स्थूला का मतलब बूंद भी इतनी मोटी मोटी है। गर्ग संहिता में लिखा है कि हाथी के बराबर बूंदें, कितनी बड़ी बूंदें? हाथी के बराबर। सोचिए, देखने की जरूरत नहीं है और देखना चाहेंगे भी नहीं आप, लेकिन सोचिए कि कितना बड़ा संकट है। धारा एक अगर धारा है तो वो कैसी धारा है, कितनी मोटी है? खंभे के समान मोटी है। और दूसरे बूंदों की वर्षा है, दो प्रकार की वर्षा है, एक तो धारा की है दूसरी बूंदों की है। बूंदों की वर्षा है तो कैसी बूंदों है? हाथी के बराबर बूंद है, ऐसी ऐसी धारा है। जलौघे प्लाव्यमाना भूर, तो पूरी की पूरी जो जमीन है वो डूब गई। ना दृश्य न तो नतम, ऊंचा और नीचा स्थान अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। जमीन में अगर आप चलें, ऐसे ऐसे पानी भरी है और जमीन में आप चलें तो कितना नीचा है, कहाँ पर कितना ऊंचा है, कुछ पता नहीं चलेगा। कितना संकट है सोचिए। कहीं पर जो है 20 फुट नीचे भी हो सकता है, जमीन हो और आप चलेंगे तो क्या होगा? बहुत कट संकट है, है? 50 फुट नीचे भी हो सकती है जमीन, कहीं पर 50 फुट नीचे, कहीं 20 फुट नीचे, कहीं पर 1 फुट नीचे, कुछ पता नहीं है। और 1 फुट नीचे से एकदम से 20 फुट नीचे हो जाए जमीन, आप चलेंगे, बहुत संकट है। ना दृश्यते न तो न तम। फिर अत्यधिक वर्षा और हवा के कारण, और मरुदगण हवा पैदा कर रहे हैं, 49 प्रकार की हवा चल रही है। कोई हवा ऊपर की ओर, कोई नीचे, कोई इधर कोई उधर, कई तरह की हवा है। अत्यधिक वर्षा और हवा के कारण कांपती हुई गौएं और अन्य पशु और शीत से पीड़ित ग्वाले और गोपियां सभी शरण के लिए गोविंद के पास पहुंचे। अत्यासा राति माते ने पशु जात वेपना गोपा गोप्य सीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः। शीत आर्ता, सर्दी में जो है बहुत कष्ट पा रहे हैं, पशु जात वेपना, जो पशु हैं वो कांप रहे हैं, और गोपा और गोपियां, गोप और गोपियां भी शीत में आर्त होकर के कहाँ क्या करते हैं? गोविंदम शरणम भेजो, गोविंद के शरण लेते हैं। भीषण वर्षा से उत्पन्न पीड़ा से कांपती और अपने सिरों और अपने बछड़ों को अपने शरीरों से ढकने का प्रयास करती हुई गौएं भगवान के चरण कमलों में जा पहुंची। सिरहसुतान चकाये न प्रच्छाद्या सार पीड़िता वेपमाना भगवता पाद मूलम उपाययुः। अपने सिरों को भी और अपने बछड़ों को भी, सुतांस मतलब बच्चों को भी, ब्रजवासी भी जो हैं उसमें हैं, तो बच्चों को भी जो है अपने शरीर से ढकने का प्रयास कर रहे हैं, सिर को भी शरीर से ढकने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चों को भी। अब क्या प्रार्थना करते हैं? हे कृष्ण, हे भाग्यशाली कृष्ण, आप इंद्र के क्रोध से इन गौओं को उबारिए, गोकुल को उबारिए, गोकुल में गौएं भी हैं और गोल ग्वाले भी हैं, गोकुल को उबारिए। हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर इतने वत्सल हैं, कृपया आप हमें बचा लें। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्ना कुपितात् भक्तः वत्सल। कृष्ण कृष्ण महाभाग, कृष्ण का दो बार नाम लेकर के ब्रजवासी क्या कहते हैं? महाभाग, कि तुम महान भाग्यशाली हो, है ना, मतलब भगवान ही समझते हैं। अगर कृष्ण को भगवान समझेंगे तो स्नेह नहीं कर सकते हैं, बालक जैसा स्नेह नहीं कर सकते हैं, तो भगवान बालक का स्नेह चाहते हैं, इसलिए भगवान जो है अपने का अपना जो है ऐश्वर्य नहीं दिखाते हैं ब्रज में, अपने ऐश्वर्य को छिपाए हुए हैं। तो जितने ब्रजवासी हैं वो क्या बोलते हैं? कृष्ण कृष्ण महाभाग, महाभाग का मतलब तुम्हारे भाग्य से हमारी भी रक्षा हो जाएगी, तुम्हारी रक्षा तुम्हारे भाग्य से होती है, और तुम्हारे भाग्य से तुम्हारी रक्षा होगी तो हमारी भी रक्षा होगी, क्योंकि हम तुमसे जुड़े हुए हैं, है ना। कृष्ण कृष्ण महाभाग, है ना। तो नाथम गोकुलम प्रभु, तो पूरा गोकुल जो है आपको ही अपना नाथ मानता है। त्रातुम अर्हसि देवान्ना कुपिता, तो कुपित देवता से आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप भक्त वत्सल हैं। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, प्रभुपाद उन्होंने लिख रहे हैं, जो भी तात्पर्य में लिखा है, कृष्ण जन्म के समय गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी, अनेन सर्व दुर्गाणी योयम अंजस्तरिष्यत है, कि इस बालक की रक्षा करने से तुम भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों से बच जाओगे, इस बालक की तुम लोग रक्षा करो। तो गर्ग जी ने भी नहीं बताया था कि ये बालक भगवान है, परमेश्वर है, इस बालक की तुम लोग रक्षा करो, इस बालक के रक्षा करने से तुम लोगों की भी बड़े बड़े संकटों से रक्षा हो जाएगी। अंजस, अंजस मतलब अनायास ही रक्षा हो जाएगी, बिना किसी प्रयास के, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, है ना, इस बालक की कृपा से। तो ब्रजवासियों को पूर्ण विश्वास था कि ऐसी भारी विपत्ति में श्री नारायण इस बालक को शक्ति प्रदान करेंगे, ऐसा अतः उन्होंने कृष्ण को सर्वस्व मान रखा था और कृष्ण उनके प्रेम को अंगीकार कर चुके थे। आगे उन्हों और तेज वायु के प्रहार से अचेत हुए गोकुल वासियों को देखकर भगवान हरि समझ गए कि कुबेर इंद्र का ये कार्य है। शिला वर्षाते वातेन हन्यमानम चेतनम निरीक्ष भगवान मेने कुपितेन्द्र कृतम हरि। तो भगवान ने समझ लिया, वो तो होना ही था, भगवान को पता था कि होना ही है, क्योंकि इंद्र में जो है चूंकि अब ये भाव आ गया, बहुत रजोगुण आ गया है, पूजा सम्मान सत्कार मान पूजा की इच्छा हो गई पाने की, और जब उसमें बाधा पड़ेगी तो उसको गुस्सा आएगा। तो यहाँ तात्पर्य शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि इंद्र ने ब्रजवासियों पर जो कहर ढाया वो भगवान कृष्ण और ब्रजवासियों के प्रेम व्यापार को बढ़ाने के लिए कृष्ण की लीला शक्ति द्वारा नियोजित था। भूखे व्यक्ति का दृष्टांत देते हुए आचार्य कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उस सुख में वृद्धि होती है जो उसे उत्तम भोजन खाने पर मिलता है। इस तरह भूख से भोजन करने का आनंद बढ़ जाता है। इसी प्रकार ब्रजवासियों को यद्यपि भौतिक चिंता का अनुभव नहीं हो रहा है किंतु इंद्र के कार्यों से आंतरिक पीड़ा हो रही है। क्या आंतरिक पीड़ा हो रही है? कि हम कृष्ण से दूर हो जाएंगे। ब्रजवासियों को क्या चिंता है कि अगर हमारी मृत्यु हो गई तो पता नहीं हम कहाँ जाएंगे और कृष्ण कहाँ रहेंगे, फिर क्या होगा? फिर तो कुछ अज्ञात दिशा में हम जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे हमें कुछ पता ही नहीं, और फिर कृष्ण का संग ना मिलेगा तो फिर क्या होगा? तो उनको चिंता किस बात की है? मरने की चिंता नहीं है बल्कि कृष्ण से दूर होने की चिंता है। इसलिए वो क्या चाहते हैं? अपनी रक्षा चाहते हैं ताकि वे कृष्ण के साथ रहें, है ना। तो ये तो श्री कृष्ण ने अपने आप सोचा, कृष्ण ने अभी उनसे नहीं बोला, अभी अपने आप सोचा, क्योंकि हमने इंद्र का यज्ञ रोका अतः इंद्र अति प्रचंड हवा ओलों के साथ घनघोर और बिना ऋतु की वर्षा कर रहा है। तो बिना ऋतु की वर्षा है, कार्तिक का महीना था ना वो, कार्तिक का महीना, तो वैसे तो वर्षा के चार महीने होते हैं, कार्तिक भी वर्षा का मतलब आ जाता है वर्षा के अंदर, लेकिन वास्तव में दो महीने वर्षा, वास्तव में तो वर्षा दो महीने की होती है ना, श्रावण और भाद्रपद, है ना, और है आषाढ़ श्रावण नहीं, चार चतुर्मास में श्रावण से शुरू होता है ना, श्रावण भाद्रपद है ना, फिर आश्विन और कार्तिक, है ना। तो आश्विन और कार्तिक जो है वर्षा के बाद कौन सी ऋतु होती है? शरद, हाँ, तो शरद ऋतु कहलाती है, शरद ऋतु होती है ये, है ना, वर्षा के बाद शरद ऋतु। तो वर्षा मतलब बहुत कम होती है और फिर इतनी वर्षा बिल्कुल, हाँ, तो ये ऋतु के अनुसार नहीं है, बिना ऋतु के इतनी घोर वर्षा, ये तो कैसी वर्षा है? प्रलयकालीन वर्षा है। अपर्त्युत्बलम वर्षम अतिवासम शिलामयम सुयागे विहते स्माभिर इंद्रो नाशाय वर्षति। इंद्र विनाश करने के लिए वर्षा कर रहा है, जबकि इंद्र वर्षा करते हैं किसके लिए? निर्माण के लिए, पैदावार के लिए, है ना, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या फिर इंद्र विनाश के लिए वर्षा कर रहे हैं, है? इंद्रो नाशाय वर्षति, है? इंद्र ने क्या सोचा? अगर मैं वर्षा नहीं करूंगा तो ब्रजवासियों को नष्ट होने में बहुत साल लगेंगे, इनको नष्ट करना है। इंद्र चूंकि वर्षा का देवता है, वर्षा पर नियंत्रण करता है, तो अपने नियंत्रण के द्वारा उसने क्या किया, अगर वर्षा ना करे, उसका नियंत्रण है वर्षा करने और ना करने पर, तो वर्षा ना करे तो ब्रजवासियों को नष्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, क्या विचार है कि नहीं? तो इसलिए उसने प्रलय काल के मेघों को आज्ञा दी कि तुरंत नष्ट कर दो, इनको तुरंत नष्ट कर दो, है ना। तो भगवान विचार कर रहे हैं, है? इंद्र क्या कर रहा है, मेरे शासन के अंदर ये अपना अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, कि कृष्ण तो परम शासक हैं, है ना। मैं अपनी योग शक्ति से इंद्र द्वारा उत्पन्न इस उत्पात का पूरी तरह सामना करूंगा। इंद्र जैसे देवता अपने शरीर का घमंड करते हैं और मूर्खतावश झूठे अपने ब्रह्मांड को, अपने को ब्रह्मांड का स्वामी समझते हैं, मैं ऐसे अज्ञान को नष्ट कर दूंगा। तो किसने अपने आप सोच रहे मन में, ब्रजवासियों को नहीं बता रहे, ब्रजवासियों के लिए कृष्ण क्या है? एक छोटे से बालक है, है ना। ये अपने अंदर सोच रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इंद्र में जो है इतना इंद्र की इतनी हिम्मत है, है? तो मैं दिखाता हूँ उसको। तो भगवान कहते हैं तत्र प्रतिविधि समयंग आत्मयोगे न साधये लोके स मानिना मोढ़िया हनस्य श्री मदम तमहां। तो भगवान इंद्र को दंड नहीं दे रहे हैं। यहाँ भगवान ने जो विचार किया वो ये विचार नहीं किया कि इंद्र को दंड दिया जाए। अगर चाहते तो इंद्र को दंड दे सकते थे तुरंत। इंद्र ने तत्र विधि सम्यक आत्मयोगेन साधये, मैं साधन करूंगा अपनी योग शक्ति के द्वारा उसकी प्रतिविधि। प्रतिविधि का मतलब सुरक्षा की विधि का जो है उपाय मैं करूंगा अपनी योग शक्ति के द्वारा, है? और उसी से ही उसका जो है मूर्खता पूर्ण जो घमंड है उसका दूर हो जाएगा। तो भगवान जो है इंद्र को दंड नहीं दे रहे हैं। और भगवान क्या कहते हैं, मन में सोच रहे हैं देवता सतोगुण से युक्त होते हैं, अतः अपने को स्वामी मानने का मिथ्याभिमान उनमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है? जब मैं ऐसे मिथ्याभिमान को भंग करता हूँ तो इससे इनका लाभ होता है, इनको शांति मिलती है, इनका जो है भला होता है। भगवान सोच रहे हैं कि मैं जो है इनका केवल घमंडी चूर करूँगा लेकिन मैं इसको दंड नहीं दूंगा। तो भगवान ने विचार किया इंद्र को दंड नहीं दूंगा, इतने से ही इसका अभिमान दूर हो जाएगा। क्योंकि उपाय, इसका तो कोई उपाय नहीं था। और तुरंत उपाय क्या कर सकते हैं आप, कोई हो सकता है उपाय? क्यों, आजकल की टेक्नोलॉजी में क्या है, कोई उपाय है? ऐसी वर्षा हो तो है, कोई उपाय नहीं। कृष्ण अगर उपाय कर दें इतने से ही उसका घमंड दूर हो जाएगा। नहीं सद्भाव युक्ता नाम सुराणाम ये विस्मय मत्तो सताम मान भंगा प्रस्मायो प्रकल्पते। तो अगर मैं जो है इसका उपाय कर दूं अपनी योग शक्ति के द्वारा तो उपाय मात्र से ही इसका घमंड दूर हो जाएगा। इसका प्रयास विनाशकारी है लेकिन मैं कोई विनाशकारी कार्य नहीं करूंगा। कृष्ण अपने मन में सोच रहे हैं मैं कोई विनाशकारी कार्य नहीं करूंगा बल्कि सुरक्षाकारी उपाय करूंगा, इससे इसका घमंड दूर हो जाएगा। ये विनाश नहीं, विनाश का जो है कोई भी कार्य नहीं होगा, विनाशकारी को मैं रोकूंगा। अतः मुझे अपनी दिव्य शक्ति से गोपों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि मैं ही इनका आश्रय हूँ, मैं ही इनका स्वामी हूँ और ये मेरे ही परिवार के हैं। मैं अपने भक्तों की मैंने अपने भक्तों की रक्षा का व्रत लिया है। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नातम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगे न स्वयं में व्रत आहिता। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम, ये जो गोष्ठ है गोकुल है ये मेरे शरण में है। मन नाथम, और मुझको ही नाथ मानता है। मत परिग्रहम, और मेरी अपनी ही संपत्ति है, मेरी अपनी ही चीज है ये, तो अपने आत्मयोग के द्वारा मैं रक्षा करूंगा क्योंकि ये मेरा व्रत है, ये मेरा व्रत है। कृष्ण का व्रत ये है। क्या व्रत है? कि जो मेरे शरण में हो पूर्ण रूप से समर्पित हो तो उसकी रक्षा मैं करता हूँ। तात्पर्य लिखा है वृंदावन वासियों ने कृष्ण को अपना प्रिय बालक मित्र प्रेमी और प्राण मान रखा था और भगवान उनकी भावनाओं को जानते थे। इस तरह कृष्ण इन भाग्यशाली लोगों के बीच रहते हुए इनके घरों में खेतों में विचरण करते थे, अपना ही घर मानते थे। सब ब्रजवासियों का जो घर है वो अपना घर मानते थे, इसे चोरी भी करते थे अपना घर मानकर चोरी भी करते, मेरा घर है, है ना, तो मैं रक्षा भी तो करूँगा, रक्षा भी करने का। ये कहकर साक्षात विष्णु अर्थात श्री कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया, जिस तरह कोई बालक कुकुर मुत्ते को उखाड़कर हाथ में ले लेता है। कृत्वा गोवर्धनाचलम धारे ले लिया विष्णु छत्राकम एवं बालक। तो किस तरह से लीला पूर्वक जो है उठाया गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने, किस प्रकार से लीला पूर्वक गोवर्धन पर्वत उठाया, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। छत्राकम एव बालक, छत्राकम में जो इसका शब्दार्थ है कुकुर मुत्ता, कहा गया है। कुकुर मुत्ता क्या है? लकड़ी में होता है कुकुर मुत्ता। ये शब्द तो ऐसे बना कि कुत्ता अगर पेशाब कर दे लकड़ी में तो हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं है, वो तो बरसात में वैसे ही हो जाता है। कुत्ता के पेशाब करने से होता है या नहीं होता अलग बात है, लेकिन कुकुर मुत्ता इस शब्द जो है बना इसी तरह से कि लकड़ी में कुत्ता पेशाब करे तो ये हो जाता है, लेकिन कुत्ता के पेशाब करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हो जाता है लकड़ी में तो कुकुर मुत्ता। इसी को मशरूम बोलते ना, ना हम लोगों के लिए मना है, खाना मना है, है ना। तो ये जो है कोई बालक जो है बरसाती छत्ता भी बोलते हैं इसको, तो बालक बरसाती छत्ता उखाड़ ले, उसको उखाड़ने में भी कोई परिश्रम नहीं होता। लकड़ी में जो पैदा होता है इतना कच्चा होता है, बच्चा उखाड़ दे कोई परिश्रम नहीं, और उठा ले तो कोई परिश्रम नहीं। ऐसे गोवर्धन पर्वत को उठाया कृष्ण, ऐसा उदाहरण देना भी तो जरूरी है, नहीं तो कोई क्या समझेगा। अगर उदाहरण ना दिया जाए तो पर्वत को उठाया तो आपके दिमाग में आएगा कि ऐसे उठाया होगा कृष्ण, है ना, आएगा ना दिमाग में, इसलिए उदाहरण देना जरूरी है। एक बालक जैसे कुकुर मुत्ता को उठाए, ऐसे उठाया, क्या परिश्रम होता है। अच्छा, यहाँ दिल्ली के लोग, दिल्ली में लोग नहीं समझते। अच्छा हाँ, दिल्ली शहर में लोग नहीं समझते हैं। कितने लोग नहीं समझते हैं या कितने लोग समझते हैं बताइए, हाथ उठाइए, कितने लोग समझते हैं? आधे लोग, 50% लोग समझते हैं गुरमत का। हाँ, क्योंकि आजकल लकड़ी भी जो है इतनी सुरक्षित रखी जाती है कि बरसात में वो लकड़ी दिखाई भी नहीं पड़ती है जो बरसात में पड़ी हो, सड़ रही हो ना? और फिर लकड़ी में जो है सब पेंट वेंट लगा करके इतना मतलब चमका देते हैं कि कुछ होता नहीं लकड़ी में। तो दिल्ली शहर में लोग नहीं समझ पाते हैं, गांव में लोगों को फिर पेड़ हैं, टूटे पेड़ हैं वहाँ पड़े हुए हैं, बरसात में जो है गीले होते हैं, उससे फिर कुकुर मुत्ता होते हैं ना? खैर जो भी हो, लेकिन वो ऐसे डंडी होती है और उसमें बड़ा सुंदर छाता जैसा लगा रहता है, छत्र जैसा होता है, बड़ा अच्छा आकार होता है उसका कुकुर मुत्ता का। तो बालक जो है उठाए, ऐसा जो है बिना किसी प्रयास के कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। तत्पश्चात भगवान ने गोपों को संबोधित किया कि हे माँ, हे पिता, हे ब्रजवासियो, अपने गवों समेत तुम अब इस पर्वत के नीचे आ जाओ। अथाह भगवान गोपान हे मृता तय ब्रजो कृषाम यथो ब्रजो समिचत गिरिगर तम सगोधनाम। तो इस पर्वत की गर्त में आ जाओ, तुम आप सब लोग जो है इस पर्वत की गर्त में आ जाओ, है ना। तो तात्पर्य में लिखा है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान किया है। अंतर्दृष्टि का मतलब है कि बताया तो नहीं गया है कुछ, लेकिन इसके अंदर और भी श्लोक में रहस्य है। वो तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि इतनी गौएं, हजारों गौएं, बछड़े, सांड गोवर्धन जैसे पर्वत के नीचे नहीं आ सकते थे, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों का स्पर्श पाकर इस पर्वत ने हर्ष के कारण अचंद शक्ति प्राप्त कर ली और इस पर्वत के नीचे सब लोग आ गए। ये कृष्ण की अचंद शक्ति है, गोवर्धन पर्वत के नीचे इतने लोग नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे ना, ये अचंद शक्ति है कृष्ण की, अचंद शक्ति है। जैसे कृष्ण के छोटे से मुख में वह माता ने पूरा ब्रह्मांड देखा था, है ना, और कृष्ण जो है माता यशोदा की गोद में पड़े हैं, छोटे से हैं कृष्ण, है ना, अचंत शक्ति है ना। और गोवर्धन का गड्ढा, उसमें भी जो है कितना प्रकाश पैदा कर दिया, उसमें रत्नों का प्रकाश हुआ, उसके अंदर और भी नीचे बेसमेंट, बढ़िया बढ़िया बेसमेंट है, है ना, सब जो है बड़ी सुविधापूर्वक सब लोग जो है उसके अंदर आ गए, है ना। और भगवान कहते हैं तुम्हें डरना नहीं चाहिए कि ये पर्वत मेरे हाथ से छूटकर गिर जाएगा, है ना। अब देखो कितने छोटे से कृष्ण है, यहाँ पर जो है वो नहीं है, जैसे हनुमान जी पर्वत उठाते हैं तो वो पर्वत से भी बड़ा रूप धारण करते हैं, तो उनके हाथ में पर्वत दिखाई देता है, है ना। लेकिन कृष्ण ने तो ऐसा नहीं किया, कृष्ण 7 वर्ष के छोटे से बालक, और छोटे से बालक का बिल्कुल छोटा सा हाथ और एकदम कोमल हाथ कोमल उंगली उसमें जो है धारण किए हैं, है ना, तो लगेगा कि कैसे कि बाद में गिर सकता है पर्वत। तो भगवान क्या कहते हैं, आपको डरना नहीं चाहिए, ये पर्वत मेरे हाथ से छूटकर गिर जाएगा, नहीं आप लोग हवा और वर्षा से भयभीत होइए, क्योंकि इन कष्टों से आपके छुटकारे की व्यवस्था पहले से की जा चुकी है। न त्रास है भय कार्यो मन हस्ता अंतरी निपात नाथ वाद वर्ष है भय नालम तत्रालम विहितम ही वहा। तो भगवान का ये कहना है कि मैं अपनी शक्ति से गोवर्धन नहीं धारण कर रहा हूँ, जिस गोवर्धन की पूजा आपने की है वे गोवर्धन ही स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि तत्त्राणम विहितम ही वहा, आप लोगों की सुरक्षा पहले से निश्चित हो चुकी है, तो जिसकी आपने पूजा की है तो वो आपकी रक्षा भी कर रहा है। आपने किसकी पूजा की, गोवर्धन की पूजा की, और गोवर्धन के रूप में भगवान स्वयं जो है भोग भी तो लगाए थे, खाया भी तो था, पूरा अन्नकूट खाया था, है ना, तो जब खाया तो फिर बजाया भी, इंद्र तो नहीं दर्शन देते कभी, इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिया, अब इन्होंने इतना खाया है तो कुछ करेंगे भी तो ना, कुछ काम भी तो करेंगे। तो भगवान का एक मतलब कहना है यहाँ, मतलब संकेत यह है कि ये गोवर्धन जो है देवता मेरे हाथ में आ गए हैं आप लोगों की रक्षा के लिए, इसलिए आप निश्चिंता मत करिए कि मेरे हाथ से गिर जाएगा, कि गोवर्धन स्वयं मेरे हाथ में आ गए हैं, तो अपनी शक्ति से ही वो जो है आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान का जो है यहाँ भाव ये है। इस प्रकार कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए गए वे सभी पर्वत के नीचे प्रविष्ट हुए, जहाँ उन्हें अपने लिए अपने गौओं बछड़ों सेवकों पुरोहितों के लिए और साथ ही साथ समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए पर्याप्त स्थान मिल गया, बढ़िया बढ़िया स्थान मिल गया, अच्छा अच्छा स्थान बना था, गोवर्धन पर्वत के गर्त में भी जो है बढ़िया बढ़िया स्थान मिल गए, आसन वगैरह जैसे पत्थर के ही आसन बने हैं, बढ़िया बढ़िया बने हैं, पुरोहितों के लिए और अच्छा ऊंचा स्थान चाहिए, प्रकाश का भी चाहिए, प्रकाश की भी व्यवस्था, तो प्रकाश कैसे होता है गर्त में, कैसे प्रकाश होता है ना, तो पूरा तथा निर्विश्वर गर्तम कृष्णा श्वासित मानस तथा वकाशम सदना सम्रजा सोप जीविना दबाई दबाई। भूख और प्यास भूलकर अपनी सारी व्यक्तिगत सुविधाओं को भूलकर श्री कृष्ण पर्वत को धारण किए 7 दिनों तक वहीं खड़े रहे, सारे ब्रजवासी उन्हें देखते रहे। ये 7 दिन और 7 रात कैसा उत्सव है, नयन उत्सव, नयन उत्सव, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं और कृष्ण हंस रहे हैं बातें कर रहे हैं, ब्रजवासी हंस रहे हैं बातें कर रहे हैं, ये उत्सव 7 दिन 7 रात हुआ, ना खाना ना पीना ना सोना, कितना आनंद है कृष्ण का दर्शन। क्षुत्रिन व्यथाम सुखापेक्षाम हित्वा तैर्ब्रजवासी भी वीक्षमाणो दधारात्रिम सत्ताहम ना चलत पदा। तात्पर्य लिखा है श्री कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य का निरंतर अमृत पीते हुए ब्रजवासियों को ना तो भूख लगी ना प्यास ना थकान, और कृष्ण भी उनके रूप को देखकर खाना पीना सोना भूल गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि सामर्थक मेघों से 7 दिनों तक लगातार वर्षा होने पर भी मथुरा जनपद में बाढ़ नहीं आई। हाँ, ये भी आज एक प्रश्न उठता है कि अगर मान लो गोवर्धन पर्वत के नीचे नहीं आ रही वर्षा तो आसपास आएगी तो कितना पानी होगा और कितना नुकसान होगा, कितनी क्षति होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, है ना। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि वर्षा का पानी तो उधर भी आता नहीं, समझे, जहाँ गर्त है उसमें भी तो आएगा पानी, है तो फिर क्या करेंगे, है उस समय एक ऐसी दीवार की आवश्यकता थी जो बहुत मोटी हो, जैसे बांध का जो है दीवार हो, बहुत मोटी बहुत मजबूत हो और बहुत ऊंची हो, ऐसी दीवार की आवश्यकता थी, है ना, और कृष्ण तुरंत इसकी व्यवस्था कर दी। क्या शेष जी को आदेश दिया, आप रोको पानी को, और वे चारों तरफ जो है अपनी दीवार बना करके बैठ गए, इतनी मोटी दीवार, वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ। शेष जी ने जो है और ऊंची नीची जमीन है, लेकिन उनका जो शरीर है वो इस तरह से ऊंचा नीचा हो गया कि एक भी बूंद पानी अंदर नहीं आ सकती। हम गोवर्धन के चारों तरफ जो जमीन है वो इस समतल थोड़ी है, ऊंची नीची जमीन है, लेकिन शेष जी हैं अपने शरीर, अब उनका शरीर भी उतना ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा सब हो जाता है, फ्लेक्सीबल। तो इस तरह से बना दी दीवार एयर वाटर टाइट, वाटर प्रूफ, एक बूंद में पानी नहीं आ सकता है ना। और प्रकाश के लिए रत्नों का प्रकाश है, यह गोवर्धन पर्वत के जो रत्न हैं वो नीचे हैं, रत्नों का प्रकाश है ना। अब पानी फिर बाहर जाएगा तो बाहर भी तो प्रलयकालीन विनाश होगा, तो उसके लिए सुदर्शन चक्र वो आगे दी, तो हजार सूर्यों का जो है तेल धारण करके वो पीने लगे पानी को, तो वो ऊपर ही ऊपर पानी जो है सुदर्शन पी रहे हैं, नीचे पानी नहीं आ रहा है। तो वहां पर चक्रतीर्थ भी है, गोवर्धन की परिक्रमा में चक्रतीर्थ भी मिलता है, जहां पर चक्र जो है अपने हजार सूर्यों का तेज धारण करके सब पानी पी लिया। तो देखो कितनी जल्दी और कितना मतलब पूर्ण उपाय हुआ, पूर्ण उपाय, किसी प्रकार का विनाश नहीं, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, है? और सुरक्षा बिल्कुल पूरी। एक ही पानी मतलब वो नीचे नहीं आने दे रहे हैं, सुदर्शन ऊपर ऊपर पीते जा रहे हैं हजार सूर्यों का प्रकाश करके, है? और जो है एक बूंद पानी अंदर भी नहीं आ रही है, ऐसी वाटर टाइट दीवाल बना दिया शेष जी ने, है ना। तो कृष्ण का जो है ये सब कार्य है, और कोई नहीं कर सकता, नहीं तो नष्ट होने के सिवा और कुछ दूसरा उपाय नहीं था। हाँ तो मैं यहाँ पर था ना। हाँ इसके बाद श्लोक संख्या 24, जब इंद्र ने कृष्ण की योग शक्ति के इस प्रदर्शन को देखा तो आश्चर्यचकित हो उठा। अब मिथ्या गर्भ के चूर होने से, अपने संकल्प के नष्ट होने से उसने बादलों को थम जाने का आदेश दिया। 7 दिन 7 रात वर्षा करके भी ब्रजवासियों का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, तब इंद्र को जो है उसने आदेश दिया, भाई अब बंद करो, स्टॉप। कृष्ण योगानुभावं तम निशम्य इंद्रोति विस्मिता निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प स्वान मेघान संन्यवार्य। ये देखकर कि भीषण हवा और वर्षा बंद हो गई है, आकाश बादलों से रहित हो चुका है, सूर्य उदित हुआ है, गोवर्धनधारी कृष्ण सब गोपों से बोले, खम ब्रह्मदिता दैत्यम वाद वर्षम तदारुणम निसम्योपरतम गोपान गोवर्धन धरो ब्रवी। तो गोवर्धन को धारण किए हुए भगवान जो है गोपों से बोले, जब देखा कि अब भगवान को पता चल गया कि अब संकट अब दोबारा नहीं आने वाला है, तो भगवान ने सब गोपों से कहा, हे गोप जनों, अब अपनी पत्नियों बच्चों और संपत्ति समेत बाहर निकल जाओ और भय त्याग दो, तेज हवा वर्षा रुक गई है, नदियों की बाढ़ का पानी उतर गया है। निर्यात जतयत रासम गोपा सस्त्री धनार्भका और पारतम वात वर्षम विद प्रायाश्च निम्न गा। मतलब अब बाहर जाओ पानी भी नहीं मिलेगा आपको, जितना पानी बरसा है वो भी पानी भी नहीं मिलेगा कि पानी भरा हुआ होगा, नहीं तो कितना पानी और जो है ऊंची नीची जमीन का पता नहीं चलेगा तो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो भगवान कहते नहीं अब कुछ भी नहीं है, वहाँ सब पानी सुखा दिया है, सुदर्शन चक्र ने सब पानी सुखा दिया है ऊपर नीचे का, नदियों में भी बाढ़ नहीं रहेगी, कुछ नहीं है, नहीं तो वो पानी फिर जो है कहाँ कहाँ जाता और कितना कितना नुकसान होता है। अपने अपने गौएं समेट कर अपनी सामग्री अपने छकड़ों में लाद कर सब गोप बाहर आए, स्त्रियां बच्चे और वृद्ध पुरुष धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चले। ततस्ते निर्योर्गोपा स्वम समादाय गोधनम सकटोढोपकरणम स्त्री बालस्था विराशन। सारे प्राणियों को देखते देखते भगवान ने पर्वत को उसके मूल स्थान में रख दिया जिस तरह वो पहले से रखा था। भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभो पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलयाम। ब्रज के सभी वासी प्रेम से विभूत थे, उन्होंने आगे बढ़कर श्री कृष्ण को बधाई दी, किसी ने उनको गले लगाया, कोई उनके सामने नतमस्तक हुआ, गोपियों ने सम्मान मैं दही अक्षत और जो मिलाया हुआ जल अर्पित किया, उन्होंने कृष्ण पर आशीर्वादों की झड़ी लगाई। गोपियां दो प्रकार की हैं, एक तो वृद्धा गोपियां माता गोपियां हैं और दूसरी प्रेयसी गोपियां हैं। तो ये माता गोपियां हैं जो कृष्ण की सुरक्षा के लिए अक्षत दही जो है कृष्ण के ऊपर डाल रही हैं, है ना। तम प्रेम वेगान निर्भृता मृजौ कसो यथा समेयो परिरंभणादिभि गोप्य स्नेहम अपूजयन मुदा दध्यक्ष दांधिर युजो सदाशिषः। तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विवेचना करते हुए देखते हैं कि प्रत्येक ब्रजवासी कृष्ण को अपने अपने ढंग से मानता था। कोई अपने को छोटा मानता था, कोई अपने को कृष्ण के समान मानता था, कोई अपने को कृष्ण से बड़ा मानता था, और सब प्रेम करते हैं और कृष्ण सबका प्रेम स्वीकार करते हैं। कृष्ण से बड़े लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, प्रेम पूर्वक उनका सिर सूंघा, चूमा सिर को, चूमा उनके बाजुओं को, उंगलियों को दबाया, और इसने पूर्वक पूछा कि थके तो नहीं हो, पीड़ा तो नहीं है, दर्द तो नहीं है कहीं। और किसके बराबर कि जो बालक थे वो हंसी छिछोली करने लगे हैं, और छोटे लोग चरणों में गिरे, पांवों की मालिश कर रहे हैं, पैर की मालिश कर रहे हैं, इस तरह से। यशोदा, रोहिणी और नंद और वरिष्ठों में सर्वश्रेष्ठ बलदेव ने कृष्ण को गले लगाया। ये सब बड़े लोग हैं, कृष्ण को गले लगाते हैं, और स्नेहाभिभूत होकर उन सबों ने कृष्ण को अपने अपने आशीर्वाद दिए। यशोदा, रोहिणी, नंदो, रामस्य बलिनाम्बर कृष्ण मालिंगे युजुर आशीषा स्नेह कातरा। हे राजन, स्वर्ग में सिद्धों, साध्यों, गंधर्वों, चरणों समेत सारे देवताओं ने कृष्ण का यशोगान किया, अतीव संतोष पूर्वक उन पर फूलों की वर्षा की। देवी देव गणा सिद्धा साध्या गंधर्व चारणा तुष्ट पूर्व मुचुस्तुष्टा पुष्प वर्षाणी पार्थिव। तो कुछ ऐसे भी हैं भक्त लोग जो है जिनके अंदर भौतिक इच्छाएं होती तो स्वर्ग में चाहते हैं, ये उनकी भक्ति फिर भी बनी रहती है, तो स्वर्ग में भी जो है वे पृथ्वी में भगवान के जो अवतार होते हैं उनका दर्शन करते हैं। तो वे जो देवता लोग हैं वे स्वर्ग के भोगों में मतलब इतने भूले नहीं होते हैं। तो भगवान पृथ्वी अगर लीलाएं करते हैं तो स्वर्ग से ही वो देखते हैं, दर्शन करते हैं भगवान की लीलाओं का। तो ये सिद्ध हैं, साध्य हैं, गंधर्व हैं, चारण हैं, देवता हैं, ये जो है भगवान का यशोगान उस समय भी करते हैं। इतने भोगों में होते हुए भी ये जो है भोगों से ऊपर उठे रहते हैं और भगवान के गुणगान में लगे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं ऊपर से। ये पृथ्वी के फूल नहीं है, स्वर्ग के फूल हैं। हे परीक्षित, देवताओं ने स्वर्ग में जोर जोर से संग और दुंदुभियां बजाई, तुम्बुरु इत्यादि श्रेष्ठ गंधर्व गीत गाने लगे। संघ दुंदुभयो ने दुर् दिवि देव प्रचोदिता जगुर गंधर्व पत्यस तुम्बुरु प्रमुखान पैन। अपने प्रेमी ग्वाल मित्रों और बलदेव जी से घिरे कृष्ण उस स्थान पर गए जहाँ वे अपने गौएं चराते थे। अपने हृदयों को स्पर्श करने वाले श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने और उनके द्वारा संपन्न किए गए यशस्वी कार्यों के विषय में सारी गोपियाँ प्रसन्नता पूर्वक गीत गाती अपने घरों को लौट गईं। यहाँ जो गोपियाँ हैं ये कौन सी हैं? प्रेयसी गोपियाँ हैं। जो प्रेयसी गोपियाँ हैं तो उनको भी कृष्ण के गुणगान करने का अवसर मिला। इस समय जो है कृष्ण की चर्चा वे खुल करके कर सकती हैं, नहीं तो उनको जो है लज्जा आती है तो कृष्ण के विषय में कुछ बात वो कर नहीं सकती हैं, लेकिन इस समय उनको जो है अब अच्छा अवसर मिल गया। ततो अनुरक्त है पशुपे परिस्थितो राजन स्वगोष्ठम सबलो ब्रजन हरि तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त एयुर् मुदिता हृदय स्पृशः। यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि गोपियों ने अपने घरों को लौटने के पूर्व अपने प्रेमी श्री कृष्ण से चुपके चुपके आंखें मिलाईं। सामान्यतः वे कृष्ण के विषय में खुलकर बातें नहीं कर सकती थीं क्योंकि वे धार्मिक गांव की कुमारियां थीं, किंतु अब उन्हें अद्भुत प्रदर्शन का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने कृष्ण के गुणों का गान किया, खुल करके गान किया। ये स्वाभाविक है कि एक नवयुवक किसी सुंदर युवती के समक्ष अद्भुत कार्य करना चाहता है। गोपियाँ अति सुंदर शुद्ध हृदय वाली युवतियाँ हैं और श्री कृष्ण उनके समक्ष अत्यंत अद्भुत कार्य संपन्न किए, फलस्वरूप उनके कोमल हृदयों के में गहरे प्रवेश कर गए। तो कृष्ण का जो है प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया गोपियों के हृदय में। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण नामक 25वां अध्याय में श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनित सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तात्पर्य तो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, पूरे तात्पर्य नहीं पढ़े हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी, हैंड माइक चालू करके दो। थोड़ा माइक लगाओ ना मुंह में, सब कुछ सुनाई पड़े।
गोवर्धन जब उठाया तो उसकी और बात, पर गोवर्धन उठाने से पहले ही प्रसाद शुरू हो गई। वो एक अगर कोई सोचे उसका जो वजन होगा वो किसी इंसान के सर पे पड़ जाए, किसी जानवर के पड़ जाए, या बाकी छोटे जमीन पर पड़ जाए तो खटे हो जाने चाहिए। तो मतलब ऐसा कोई आदत है किसी अंदर की, मतलब
नहीं नुकसान हो? कृष्ण का जो नियंत्रण है वो पूरा रहता है। तो संकट दिखाई दिया लेकिन संकट में कोई ब्रजवासी पला नहीं, लेकिन संकट दिखाई पड़ा कि संकट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई, ठीक है ना। संकट तो बहुत बड़ा था लेकिन दुर्घटना नहीं हुई। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरी शशि, कृष्ण गीता में कहते हैं मुझ में चित्त लगाओगे तो जितनी कठिनाइयाँ हैं मेरी कृपा से पार हो जाओगे, है ना। तो कृष्ण के चरण कमल की नौका में बैठे हुए आप सुरक्षित रूप से कठिनाइयों के समुद्र को पार कर जाएंगे, है ना। तो नौका में आप बैठे हैं तो बिल्कुल सुरक्षित हैं, समुद्र बहुत खतरनाक है, आप सुरक्षित हैं, है ना। मत चित्ता, तो ब्रजवासी कृष्ण में चित्त लगाते हैं इसलिए। और कोई? हाँ जी, नहीं, मनमंत्र जब समाप्त होता है तो प्रलय होना जरूरी नहीं है। प्रलय होती है या प्रलय नहीं होती है वो उसमें जो है कोई निश्चित मतलब ये बात नहीं है कि प्रलय होगी, प्रलय हो भी सकती है प्रलय ना हो, ठीक है ना। हाँ, और तब तक वो बंधे रहते हैं। केवल जो है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, हजार चतुर्युगी पूरी होती है, तब वो जो है खोले जाते हैं और तब वो वर्षा करते हैं। सारा का सारा अगस्त मुनि ने नहीं पी लिया था, बल्कि ये बताया गया है कि सुदर्शन चक्र जो है उसी प्रकार से पानी को पी रहा था जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र पिया था। गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन है कि जिस प्रकार अगस्त मुनि ने समुद्र पिया था उसी प्रकार से सुदर्शन चक्र उस पानी को पी रहा था, ऐसा वर्णन है। हाँ जी, हाँ, वास्तव में इंद्र की कोई अथॉरिटी नहीं है, वो तो जो है उनका दुरुपयोग ही किया उसने। इंद्र, हाँ ये होता है कभी अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, और वो मेघों को भी डर लग रहा था, नहीं तो कुछ चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। लेकिन कृष्ण जो है मतलब इतने उदार हैं कि कोई दंड नहीं दिया, लेकिन जो है इसमें गर्ग संहिता में आता है किसके बाद जो है इंद्र ने वज्र चलाया गोवर्धन के ऊपर, और गोवर्धन के ऊपर वज्र चलाए इंद्र तो पर्वत को तो चूर्ण बना देगा। तो फिर भगवान ने मतलब अपना एक थोड़ा सा मतलब कदम उठाया और क्या किया, उसके हाथ स्तंभित कर दी, लो चलाओ वज्र। इतना ही किया, ज़्यादा नहीं किया, केवल जितना आवश्यक था उतना है। इंद्र का हाथ हो गया स्तंभित, तब वो डरा, अब भागा, फिर सब जितने मेघस्था भागेस्था आप दौड़े भागे, जैसे शेर की एक झपट्टे से जो है हाथी भाग जाता है, ऐसे सब भागे। ठीक है, अच्छा दो लोग हैं, ठीक है दो प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, एक और दो, हाँ चालू है, चलो। हाँ
जैसे भगवान श्री कृष्ण ने हाइट भी नहीं बढ़ाई, हाइट तो वृद्धि के साथ साथ लेते हैं, ब्रजवासी कम से ऊपर हाइट के लिए जब वो अंदर गए सारे भगवान से टीला पे जाके खड़े रहते हैं।
हाँ बिल्कुल, एक टीले के ऊपर खड़े हुए कृष्ण और पर्वत को उठा लिया है ना, तो फिर काफी मतलब नीचे तो बहुत मुश्किल होता है, झुक कर के सब जाते अंदर, और गौए तो जा नहीं पा सकते, गई तो जा भी नहीं सकती है ना, सब बैलगाड़ियाँ भी गई, सब सामान गया, सब कुछ गया, तो कृष्ण ऊंचे टीले पर खड़े होकर के उन्होंने पर्वत को उठाया था, जरूर सही बात।
जैसे मान सम्मान मिल जाता है
नहीं, ये रजोगुण के कारण है, रजोगुण में ये सब जो है अंतर होता है। सतोगुण में आप आते हैं तो मान अपमान, मानापमान स्तुल्यो में त्रारी पक्षी हो, सतोगुण में अगर आप आते हैं तो मान और अपमान का इतना अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हाँ फिर भी मान अपमान का अंतर तो है ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सत्वगुण में वो विचार करता है कि मुझे है, मतलब क्या उचित है और क्या उचित नहीं है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा क्या कर्तव्य है जिससे मेरा कुछ कर्म ना बने, मेरा कोई दोष ना बने, सत्वगुण में वो विचार करता है, उस तरह से वो अपना कदम उठाता है, एक एक कदम उठाता है। ऐसी बात थोड़ी है, पांडवों का अपमान किया, द्रौपदी का अपमान किया तो आप क्या कहेंगे, ऐसे थोड़ी कि द्रौपदी सोचे नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी है, द्रौपदी चाहती थी कि इनका जो है मतलब हाँ नष्ट होना चाहिए, इनकी मृत्यु होनी चाहिए, इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, और इस तरह से पूरे संसार में धर्म की स्थापना हो, कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसका ये परिणाम होता है, तो पांडव लोग भीमसेन द्रौपदी ये लोग चाहते थे, सीता जी का अपमान किया रावण ने, तो सीता ही चाहती थी रावण की मृत्यु होनी चाहिए और रावण को मार करके ही मेरे पति मुझे यहाँ से लेके जाएं, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई मान अपमान का कुछ अंतर नहीं पड़ता, मान अपमान का अंतर पड़ता है, लेकिन फिर भी वो इन बातों को अच्छी तरह से गहराई से समझता है कि मुझे जो है मतलब कितना आवश्यक है और कितना अनावश्यक है, अनावश्यक सम्मान होता है, ज़्यादा सम्मान मिलता है तो वो स्वयं में लज्जित होता है कि मुझे इतना सम्मान नहीं मिलना चाहिए, मिल रहा है, कृष्ण दे रहे हैं, कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की उदारता है, मुझे सम्मान मिल रहा है ना, मुझे इतना सम्मान नहीं मिलना चाहिए, कष्ट भी मिलता है तो वो सोचता है कष्ट तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, कृष्ण की कृपा से मुझे कष्ट कम मिल रहा है, तो ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के जो है ऐसे विचार होते हैं। ठीक है ना, आपका प्रश्न, आखिरी प्रश्न, वायु देवता एक भी हैं, वायु देवता एक भी हैं, और 49 ये जो देवता हैं ये भी वायु के देवता हैं, और ये दिति के गर्भ से पैदा हुए थे, तो इनका ज़्यादा विवरण तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये हैं, ये इंद्र के साथ रहते हैं, इंद्र के छोटे भाई हैं, ये इंद्र की हमेशा सेवा में रहते हैं, 49 मरुद गण ये कहलाते हैं, और जो वायु देवता हैं उनको भी मरुत बोलते हैं, तो वो इस कारण से बोलते हैं कि ये वायु के देवता पहले से इंद्र के भाई बन गए हैं, ये वायु के देवता हैं, तो जो पहले से वायु देवता हैं उनको भी मरुत बोला जाता है। हाँ जी, मारुति, हाँ मरुत के पुत्र हैं इसलिए मारुति, दशरथ के पुत्र दशरथी, इस तरह से बनाया। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधिका रमन की, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, गौर नताय की, कृष्ण बलराम की। हरि बोल।
मुश्चित्ता सर्व